मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं थोड़ा सा ध्यान इस तरफ आपका ले जाना चाहूँगा कि जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, इसका आपके एग्जामिनेशन में क्या रोल है। ऐसा क्यों, हम आगे चल करके देखेंगे। लेकिन आइए पहले कुछ जो दूसरी बातें हैं वो मैं आपसे कर लूँ। ये जो मेरी पहली बात है वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। दोस्तों, आप सबको मैंने बिल स्मिथ का एक छोटा सा पोर्शन अपनी आवाज़ में उपलब्ध कराया था, जिसे आप एक प्रकार से मोटिवेशनल लेक्चर कह सकते हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सच पूछे तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा, मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूँगा कि उस लेक्चर को लेकर जिस तरह के प्रयोग मैंने आपसे करने को कहे थे, आप लोगों ने वो प्रयोग किए हैं। और मेरे लिए यह सुखद घटना थी या सुखद खबर है कि उसके आपको बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। यदि आप उन परिणामों को पकड़कर आगे चल सकेंगे तो आप पाएंगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई कैसे करना चाहिए, किताबें कैसे पढ़नी चाहिए, लेक्चर कैसे सुननी चाहिए, इसके बारे में आपको बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिल सकेगा, या यूं कह लीजिए कि वो सिस्टम ही आपके अंदर आ सकेगा। तो आभार इस बात के लिए कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी और उस पर अमल किया। दोस्तों, एक खबर यह है, आप सब ने अखबारों में पढ़ा होगा, या हो सकता है कि आजकल तो गूगल का जमाना है, आपको जानकारी भी हो गई होगी कि अभी जो प्री एग्जाम होने हैं अक्टूबर में और इसके बाद मेंस की भी डेट डिक्लेयर कर दी गई है और वो 7 जनवरी को मेंस के एग्जाम होंगे। यानी कि आपको लगभग लगभग 2 महीने का समय मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेगा, जो अपने आप में पर्याप्त है। क्योंकि मैं तो ये मान करके ही चलता हूँ कि प्री की तैयारी के दौरान ही आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जानी चाहिए और फिर जो बीच का जो समय है, जो अभी 2 महीने का मिलेगा आपको, इसमें केवल आप रिवीजन का काम कर रहे होते हैं। तीसरी बात यह है दोस्तों कि आपको मालूम है कि यूपीएससी में सिविल सर्विस के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले कहा था कि आप सब वहां जाएं और जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट कहना चाहिए कि इंटरव्यू दे करके बाहर आ रहे हैं, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें, उनसे उनके अनुभव पूछें, किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं यह जानकारी लें। आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्लीज़ ये मत कहिएगा कि सर हमारा एक दिन खराब हो जाएगा। ये एक दिन खराब नहीं है, बल्कि एक दिन लगा करके 100 दिनों जैसा लाभ उठाना है। तो प्लीज आप सब ऐसा करें जिनके लिए भी ये संभव हो सके। और एक रिक्वेस्ट मेरी ओर से है कि यदि आप वहां जाते हैं और आपकी बातचीत होती है तो प्लीज मुझे भी ईमेल के जरिए बताने का कष्ट करें कि सर मैं इनसे मिला और इस तरह से बातचीत हुई और ये प्रश्न उनसे पूछे गए है ना। इसका उपयोग फिर मैं हो सका तो अपने डेली ऑडियो लेक्चर में आपके माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने के लिए कर सकूंगा। आइए अब थोड़ी सी दूसरी घटनाओं और समाचारों को देख लेते हैं। कल एक कॉन्क्लेव हुआ था, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। कोविन कोविन हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिससे हम कोविड की ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ये सब करते रहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 142 देश के जो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लोग थे वो उपस्थित थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है, ये हम दुनिया को उपलब्ध कराएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों मिलकर के बकायदे यूएनओ में ये मांग कर चुके हैं कि ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है, जो वैक्सीन्स बने हैं, इसका जो फार्मूला है उसे सार्वजनिक कर दिया जाए, या यूँ कह लीजिए कि कॉपीराइट फ्री कर दिया जाए, बौद्धिक संपदा समाप्त कर दी जाए, ताकि ये वैक्सीन ज़्यादातर कंपनी बना सकें और लोगों को बहुत सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो सके। इस पर हम लोगों ने पहले भी बात की थी। जहां तक कोविड की बात है फ्रेंड्स, देखिए कि भारत शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहा है, जो इसकी अपनी सांस्कृतिक बहुत बड़ी पहचान है। आज की नहीं बल्कि सदियों से, जब से हमने सोचना शुरू किया है तब से हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। इसी के तहत भारत ने पिछले साल जो दूसरे देश हैं उनको लगातार मदद की थी, डॉक्टर्स भेजे थे, अपने यहाँ से नर्सेज भेजी थी, फिर हम लोगों ने फिर उनको वैक्सीन भी दी। हालांकि उसको लेकर के हमारे देश में बहुत आलोचना हुई कि हमने अपने यहाँ वैक्सीन न रख करके दूसरे देशों को प्रोवाइड की, लेकिन फिर भी दूसरे देशों को वैक्सीन भेजी गई। और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी एक नारा भी दिया, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि जो धरती है वो एक है, सबका स्वास्थ्य भी एक जैसा होना चाहिए। यानी कि भारत शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोविड का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सहयोग का आप ये कह लीजिए कि प्रतिनिधित्व करता रह ही नहीं रहा है, बल्कि एक तरह से प्रवक्ता भी रहा है और वह उसके कार्यों में भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक खबर थी, रेडियो खबर थी कि जो वन प्रबंधन हमारा है, एक वन अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसका एग्जैक्ट नाम कुछ दूसरा है लेकिन बहुत पॉपुलर हो गया है, वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था, जिसमें जो वन क्षेत्र के आसपास और वहाँ जो जनजाति समूह रहते हैं उनको जमीन मालिकाना हक देने की बात कही गई थी, कुछ और भी अधिकार उनको दिए गए थे। अभी केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वन प्रबंधन जो है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, उसमें जनजातियों को और अधिक अधिकार दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है, जब उन अधिकारों को सरकार अनाउंस करेगी तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यदि मुझे मिला तो अब मैं निश्चित तौर पर आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। दोस्तों, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, और आज के मुख्य विषय को मैं आपके सामने अलग तरीके से रखना चाह रहा हूँ। इसको लेकर के कल शेखर गुप्ता जी ने बकायदे एक आर्टिकल लिखा था और वह आर्टिकल आज के दैनिक भास्कर में प्रकाशित भी हुआ है, वह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उन्हें नोट भी कर लीजिएगा। इसी को आधार बना करके फिर दैनिक भास्कर ने बकायदे एक एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है, वह भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और दैनिक जागरण ने भी इस पर अपना संपादकीय लिखा है, वह भी आपको दिया जा रहा है। इन सब को मिला करके आप एक अच्छा सा नोट तैयार कर लीजिएगा। यह इस विषय पर है कि जो भारतीय चेतना है, यानी कि यूं कह लीजिए जो भारतीयता है, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सोच है, वो किस तरीके की है वर्तमान में, ऐतिहासिक काल में नहीं, अभी भारतीय किस तरीके से सोचते हैं। जब मैं भारतीय की बात कर रहा हूं तो प्लीज अपने दिमाग को करेक्ट कर लीजिए, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, हर वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, कुछ भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईसाई पादरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भारत का है, तो उनकी अपनी सोच किस तरीके की है। दरअसल एक संस्था है पीयू रिसर्च सेंटर, पीयू रिसर्च सेंटर, ये बेसिकली अमेरिका का थिंक टैंक है, कुछ अमरीकियों के द्वारा तैयार किया गया एक विचार समूह है आप कह लीजिए। 2004 में यह थिंक टैंक तैयार किया गया था और माना जाता है कि यह जो थिंक टैंक है ये काफी तटस्थ तरीके से अपना काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, और दोस्तों ये खासकर विश्व में जो सामाजिक स्थितियां होती हैं, सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, उनके बारे में रिसर्च करता, अपनी तरफ से नहीं करता, बकायदे रिसर्च करता है, वहां जाता है, लोगों से बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद फिर वर्तमान में उन मुद्दों के बारे में किस तरीके से सोचा जा रहा है, क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, इन पर फिर वह अपनी रिपोर्ट जारी करता है। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं भारतीय विचारों की, भारतीयों के वर्तमान सोच की, वह प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा ही किए गए शोध पर आधारित है, जिसको लेकर के शेखर गुप्ता जी ने आर्टिकल लिखा है, ये आपको बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। बहुत सिंपल सा है, इसमें से मुख्य बिंदु निकालने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां मैं ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारतीय संस्कृति है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपकी जो समझ है वो बहुत गहरी होनी चाहिए, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और मल्टी डायमेंशनल भी होनी चाहिए। मल्टी डायमेंशनल कहने का मतलब है कि कई कई कोणों से आप उसे देख सके, समझ सके, और ऐसा केवल तभी हो सकेगा जब आप इस पर पढ़ने के बाद, इस पर लेक्चर्स सुनने के बाद उस पर विचार करेंगे। जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक आप मेन एग्जामिनेशन में इस पर पूछे गए प्रश्नों को हल नहीं कर सकेंगे, और कर भी सकेंगे तो शायद उस तरीके से न कर सकें जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। ये टॉपिक बहुत सरल है, टॉपिक बहुत सरल है, उत्तर लिखना थोड़ा सा कठिन है। तो अगर टॉपिक सरल है तो उसे समझने में आसानी है, बस उस पर आपको विचार करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से उसे आपको देखना पड़ेगा। पिछली बार जो इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको ये जानकर हैरानी होगी, सोच करके देखिए कि क्वेश्चन पेपर फर्स्ट जो जनरल स्टडीज का होता है उसमें देखिए संस्कृति पर आधारित कितने प्रश्न पूछे गए और किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। मैं केवल ये आपके सामने अभी रख रहा हूं क्योंकि इसे जानने के बाद मुझे लगता है कि आपके दिमाग में शायद कुछ इस तरह के विचार उभर सकें कि आपको किस तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं, किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है और आगे चल करके भी इस टॉपिक की कैसे तैयारी करनी है। मैं आपको सामने केवल प्रश्न रख रहा हूं। एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, चर्चा कीजिए 150 शब्द। राइट, व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर, डिस्कस। राइट, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 10, सेम ईयर, धर्म निरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, 150 शब्द। व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए 250 शब्द। डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, एलोबरेट विथ एग्जाम्पल्स। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 20वां, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं, चर्चा कीजिए 250 शब्द। आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी, डिस्कस। आप सोच करके देखिए, एक ही वर्ष, एक ही प्रश्न पत्र, टोटल 20 क्वेश्चंस और उसमें 4 प्रश्न केवल संस्कृति पर हैं। दोस्तों, इसी से आप इसके महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अमित कुमार सिंह कोची, सौम्य रंजन मिश्रा और हिमांशु अग्रवाल। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को फ्रेंड्स अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।